भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरांध सिग्नानांजन शलाकया चक्षुर्ग्रंथितं येन तस्मै श्रीगुरुवेनम जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत कदाचित श्वास भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे
हरे। कृष्णा
हरे कृष्णा।
सब सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे भक्त कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये वीडियो भी देख रहे हैं। आत्मा प्रभु का सजेशन था कि एक जो भी प्रोग्राम होता है तो वो वीडियो टेलीकास्ट हो तो वो भक्त लोग दुनिया के दूसरे किसी कोने में बैठे हो
बालाजी टीवी लाइव
तो वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का ये सदुपयोग गिना जाएगा अगर दुनिया से दुनिया के दूसरे और कोने में होंगे तो। सो ऑनलाइन प्रश्न भी हम पूछ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन बड़ा ही पास में है और हर साल आप चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते हो, किंतु क्या आप मानते हो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है? हाँ
यस।
तो चैतन्य महाप्रभु, कई बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ चैतन्य महाप्रभु शायद कोई एक बड़े संत थे, लेकिन उनके गुण इतने महान थे कि लोग उनको भगवान कहने लगे, तो शायद ये एक गलत फहमी होगी। लेकिन इससे भी आगे बढ़ के चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, ये एक विश्वास अपने आप में एक विश्वास मांगता है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी रियलाइजेशन के साक्षात्कार के अनुसार आपको ये विश्वास दृढ़ होता जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। अभी तो हम मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है कृष्ण, लेकिन कितनी कितने प्रपोर्शनेट कितने परसेंटेज हम मानते हैं ऐसा कि हम चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं? कितने परसेंटेज? शायद कोई 5%, कोई 10%, कोई 20%, कोई 30%। एक बार मैं मायापुर में था तो किसी बात को लेके चर्चा हो रही थी और जननिवास प्रभु उससे बात कर रहे थे। मैं मायापुर में था, वो भी मायापुर में थे, हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे तो बात बात में प्रसाद के विषय में बात हो रही थी, तो जगन्नाथ जी का प्रसाद और चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद और इस तरह से। तो मैंने केवल ऐसे ही बोल दिया, ऐसे जस्ट लाइक दैट, जैसे फिलोसॉफी बताने का, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, ऐसा ऐसा करके मैं बोला। तो जगन्नाथ प्रभु तो बहुत ही खुश हो गए और फिर उन्होंने कहा कि ये विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है कि जय गौर जो चैतन्य महाप्रभु है सही कृष्ण, वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ। अगर किसी व्यक्ति को जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हुआ तो उसको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिल गया, हो गया। ऐसा एक भक्त था जिसको जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके जीवन रोज डेली यू नो आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। कौन वो भक्त है महान?
हरिदास ठाकुर।
की विनम्रता के विषय में आपको ज्ञात है वो कितने विनम्र भक्त थे? बताओ, हरिदास ठाकुर के विषय में तो सुनने के लिए बड़ा मन बड़ा हमेशा लालायित होता है। बताओ।
वो पुरी के जो मंदिर है तो वो सिर्फ चक्र को दर्शन करते थे, वो जिस जो रास्ता है वहां पर भी नहीं जाते थे।
कौन सा रास्ता?
ग्रैंड रोड है,
मेन रोड जो है वो ग्रैंड रोड।
नहीं ग्राउंड रोड
हाँ वही ना मेन
ग्राउंड
ग्राउंड ग्राउंड
वो चौड़ा वाला है वो बड़ी चौपट बड़ा रास्ता उड़िया में क्या बोलते उसको एनीवे तो उस पर नहीं जाते थे
वो मलेच कुंड से पैदा हुए थे इसलिए वो बहुत ही निम्न कक्षा के समझते थे अपने आप को इसलिए ये रास्ते पे नहीं आते थे जिससे उनकी परछाई किसी पे गिरे और वो अंदर जाए तो आप पवित्र हो जाए इसलिए।
वो प्रभु ये फॉर्चुनेटली मलेच्छुकल में जन्म लिया हम लोग तो ब्राह्मण कुंड में जन्म लिया मलेच्छुकल में जन्म नहीं लिया। अच्छा बात तो सही है आपकी यही है फिर और बताओ आप सब विद्वान भक्तों बताओ
ना 3 लाख जॉब पूरा करने के पहले प्रसाद नहीं लेते
क्यों
3 लाख जॉब
कर क्यों ऐसा क्यों कर रहे
वो जो ब्रह्मा जी जब बने थे तब वहाँ पे मायापुर में तपस्या की थी और तभी उन्होंने जो कृष्ण का उन्होंने अपराध किया था इसलिए फिर बाद में जब उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया हरिदास के रूप में तब उन्होंने नक्की किया कि मैं इतना करूँगा क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ एक नम्रता पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसा सोच रहे थे।
हम तो नहीं हरिदास ठाकुर की नम्रता के विषय में आप सबके भक्तों का यू नो गुणगान आपके आपके द्वारा गुणगान सुनना चाहते बताइए और बताइए तो 2-3 क्या हरिदास ठाकुर में इतने गुण थे
और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी
आपने बता दिया और भक्तों को जांच दे सकते हैं आपने नहीं बताया बताओ
स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके जाते थे हरिदास ठाकुर के
क्यों
क्योंकि हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करते
नहीं करते थे
केवल चक्र के दर्शन करते थे
क्यों नहीं जाते थे
क्योंकि वो अपने आप को पापी मानते थे और मलेच्छ में जन्म लिया था
ओके और बताइए भक्त 3 हुआ आपके हमारे पास 14 भक्त है शायद बताइए
महाप्रभु जब मायापुर छोटी पुरी आ गए थे तब हरिदास ठाकुर सब सो गए थे पूरा रात सो गए थे तो हरिदास ठाकुर जागे थे उनको रुकने के लिए
अच्छी बात है सही बात है चैतन्य महाप्रभु के विषय में आपको ये हरिदास ठाकुर का विषय में बताता हूँ मैं आपको छोटा सा एपिसोड वो अब और बताइए पहले अच्छा कुछ मांगते नहीं थे मैंने तो कभी नहीं देखा हरिदास ठाकुर भिक्षा मांगते हो कभी वो नाम की भिक्षा मांगते थे सबसे और किसी से कुछ मांगा नहीं उन्होंने और कुछ
दृढ़ निश्चय थे भगवान के नाम के प्रति 22 बार था तो भी वो भगवान का नाम लेना छोड़े नहीं थे और प्रार्थना किए थे कि जो मारे हैं उनको उनको भी
हम भी हमें भी ऐसा करना चाहिए
करना चाहिए
हमें कोई मारता नहीं है सही बात है हमारी पिटाई नहीं होनी ना 22 बार में तभी हमारी परीक्षा होगी पिटाई होनी चाहिए फिर और बताइए और बताइए
हरिदास ठाकुर कहते थे कि मैं आपके चरणों के अंदर मेरे जब भी मूर्ति हो तो मैं आपके चरणों के अंदर मेरी मूर्ति होनी
चाहिए
जब तक मैं मेरा सांस है तब तक मैं आपके चरणों का दर्शन करते रहूं और लास्ट में आपके चरणों में
उनको प्रभु जी एक्चुअली पता चल गया था कि चैतन्य महाप्रभु लीला
जल्दी
समाप्त करने वाले हैं तो उतने चैतन्य महाप्रभु से आसक्त थे कि वो उनके बाद रह नहीं सकते थे तो इसलिए उन्होंने उनसे पहले ही लीला समाप्त करने का विचार किया चैतन्य महाप्रभु से और फिर उन्होंने उनके सामने चैतन्य महाप्रभु के सामने ही उन्होंने अपनी लीला
और भी भक्त बताओ जिसने नहीं बताया जो भी आपको याद है ऐसे जरूरी नहीं कि आपको एकदम हाई फाई होना चाहिए ना ना आपने तो हो गया आपका नहीं बताओ गिफ्ट रखे इधर कुछ गिफ्ट रख देते इधर जो कोई बोलेगा उस पे एक लड्डू क्या है आज प्रसाद में लड्डू है क्या या फ्रूट है क्या है माता जी को भूतना पड़ेगा
हाँ माता जी को भूतना
पड़ेगा
लड्डू है ठीक है तो जो बोलेगा उसको मिलेगा। तो अब तो बोलो एकदम फर्स्ट क्लास लालच दे दिया मैंने। अब बताओ जो कुछ याद है बताओ। आपका तो हो गया एक दो तीन, सनातन हो गया, गौरंग भी हो गया ना, चार माता जी हो गए, पांच छः कविता का बाकी है, रेखा माते का बाकी है, बिपिन प्रभु का बाकी है, हरिदास ठाकुर है और कौन। हाँ हरिदास ठाकुर है, वैष्णव बन जाती है, सोचिए टकलू करा देती है, सोचो। वेरी नाइस, और बताइए हरिदास ठाकुर।
वो
रो रहे होते और वो कहते हैं कि मैं बताइए।
फिर वो राजा ने उनकी कसौटी ली थी।
हाँ वो वेश्या भेज दिया था, प्रोस्टिट्यूट भेजा था, 22 बाजार में पिटा था। वही बात कर रहे थे, पिटाई वाली बात। और आप बताइए जो भी आपको याद है। जितना याद आ रहा है, जो भी कुछ याद आ रहा है रिपीट कर लो, नो प्रॉब्लम। जो आपने सुन लिया अभी उसमें से बता दो कुछ भी, रिपीट कर लो। आप बताइए जो सुन लिया बताए, तो आपने तो बता दिया, आपका हो गया। ओके आपका भी हो गया, ठीक है। जिसको रिपीट करना है बताओ।
लीला हमने समाप्त करी पछी चैतन्य महाप्रभु हमने પોતાના હાથમાં લઈ અને છેક ત્યાં લઈ ગયા તા મહા સંકીર્તન થયો તો જેવો
ઓકે
वो नित्यानंद प्रभु के साथ जाके घर घर भिक्षा मांगते रहे, नाम का भिक्षा, हमें नाम बोलो और हमें खरीद लो, ऐसा भिक्षा मांगते थे।
हरिदास ठाकुर के गुण इतने अनंत है कि अगर चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि अगर सारे भक्त इकट्ठे होकर उनका गुणगान गाए तो भी कम है। उस समय चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भी अगर इतना, आप सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु ने नाम आचार्य का स्थान किसी को नहीं दिया, हरिदास ठाकुर को दिया नाम आचार्य, नाम के आचार्य। और ये ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, कौन से लोक में किया था, कौन से स्थान पर किया था,
नवद्वीप में किया था,
नैरो करो,
अंतर्द्वीप
में किया था। अंतर्द्वीप में इसलिए किया था, उस जगह का नाम अंतर्द्वीप इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने उनको अंतर से प्रेरणा दी थी तप करने के लिए, और गौर चंद्र वहां पर प्रकट हुए थे अंतर्द्वीप में, मायापुर में। तो अगले शुक्रवार को हम प्रयास करेंगे कि आपको नवद्वीप का संक्षिप्त महिमा बताएंगे, अगले बुधवार को नवद्वीप का पूरा संक्षिप्त महिमा। लेकिन अंतर्द्वीप में ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी और उनका अपराध भावना से ग्रस्त होने के कारण उन्होंने भगवान से ऐसी कृपा मांगी कि वो म्लेच्छकुल में जन्म ले। सो म्लेच्छकुल में जन्म लेना ये क्वालिफिकेशन एक्चुअली नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हरिदास ठाकुर नम्र थे क्योंकि उनका जन्म म्लेच्छकुल में हुआ था तो ये गलत है। हरिदास ठाकुर स्वाभाविक रूप से शुद्ध भक्त है, इसलिए वो विनम्र है, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए विनम्र होना बहुत ही आवश्यक है। भक्त विनम्र होते हैं, मूर्ख नहीं होते। इसलिए ये नहीं सोचना कि विनम्र में सब एकदम मूर्ख बन के बैठ जाए और यू नो हाँ प्रभु जी आप जो बता रहे हो वही सही, हाँ अच्छा आप बताओ वो भी सही है, वो नहीं, वो मूर्ख नहीं है। भक्त विनम्र है, आदर देते हैं, सुपरफिशियल नहीं, मन से आदर देते हैं, हृदय से आदर देते हैं, लेकिन बुद्धिशाली होते हैं भक्त। तो विनम्रता से हमें भक्ति के भाग में जुड़ना चाहिए। और क्या प्रेम प्राप्त होना चाहिए, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण हम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होना ही चाहिए। हरि नाम महामंत्र एत स्वभाव, हरिनाम महामंत्र का ये स्वभाव है कि यही जपे से ही मैंने क्या है उपजाए भाव, जिसके जो जप करता है हरिनाम का उसके मन में भाव प्रकट होता है। अभी हमारा भाव प्रकट नहीं हो रहा है क्या, कभी हमें कोई चिंता नहीं होती इस विषय में, बहुत बड़ी समस्या है, क्या करें। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भक्त जितना गंभीर होता है उतना ही वो भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है। अभी कुछ समय पहले मैं किसी भक्त से बात कर रहा था, भगवान चेक करते हैं आपकी डिजायर कितनी स्ट्रांग है, अगर आपकी डिजायर स्ट्रांग है तो भगवान सामने रिसिप्रोकेट करेंगे, अगर आपकी डिजायर कमजोर है तो उसमें भगवान क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। हमारी इच्छा कितनी तीव्र है, यू नो किसी की तीव्र इच्छा होती है तो हृदय से स्फूर्णा होती है कि भक्ति तीव्र भक्ति होती है तो, लेकिन हर एक वस्तु में तीव्र भक्ति होनी चाहिए। आज एक भक्त में बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे यू नो कैसे भक्त का भक्तों का लक्षण कितना दिव्य होता है, कि हम सब चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़े हुए आंदोलन में, और चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है जार देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, सबको कृष्ण का संदेश दिया जाए, चैतन्य महाप्रभु का ऐसा इच्छा है। और ये आंदोलन को लेकर के हमारे वैष्णव आचार्य ने प्रचार किया, इस आंदोलन को लेकर के श्रील प्रभुपाद जी गए विश्व में, प्रभुपाद जी विश्व में कहीं गए दूसरे देशों में, उससे पहले वो कितनी बार फेल हुए थे
इंडिया में, काफी साल तक,
25 साल तक।
लीग ऑफ ड्यूटीज जाते हो आप झांसी का, झांसी का लीग ऑफ ड्यूटीज झांसी का साथ, वहां पर प्रभुपाद ने सोच के रखा था कि यहाँ पर मैं प्रसादम हॉल बनाऊंगा, यहाँ पर ये करूंगा, यहाँ पर यू नो एक 40 भारतीय अगर मुझे मिल जाए तो मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा, मैं जीबीसी कमेटी का निर्माण करूंगा, सब कुछ लीग ऑफ ड्यूटीज से कि वो पूरा का पूरा हार्मोनिस्ट जो था उसमें उनकी ऐसी इच्छा थी कि द हार्मोनिस्ट को टाइम मैगजीन से भी ज़्यादा पब्लिश पॉपुलरिटी मिले, ऐसी उनका, और उनके प्रयास भी किए उनकी इच्छा के अनुसार, लेकिन उनके गुरु भाइयों ने उनको सहयोग नहीं दिया। तो कितनी बार, एक बार मुरारजी सुमति मुरारजी उनके पास गए थे टिकट लेने के लिए, तो उन्होंने एक बार में हाँ बोल दिया था,
पांच
घंटे बैठे रहे वहीं पे, है ना। तो यू नो कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता, यू नो सुमति महाराज ने कहा कि नहीं आपको टिकट नहीं मिलता, तो कोई सोच सकता है चलो यार भगवान की इच्छा ही नहीं है छोड़ो चलो घर जाकर सो जाते थोड़ी देर, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने अपनी फिलोसॉफी, यू नो कोई भक्त होते ना थोड़े ओवरवाइज होते, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं प्रचार करूँ, भगवान की इच्छा नहीं है, ये दुनिया ही ऐसी है, अब क्या करें, कलयुग का प्रभाव इतना है, कलयुग में लोग बदल ही नहीं सकते, प्रचार हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रभु जी भजनानंदी बन जाओ बस, अपने से जितना होता है उतना करो, नहीं होता है तो छोड़ो, होगा देखा जाएगा, वो मिशनरी एक्टिविटी नहीं है, मिशनरी भक्त कभी ये नहीं सोचता, वो कभी ये नहीं सोचता कि क्यों नहीं होगा, वो तो ऐसे सोचते हैं कि हर एक वस्तु का उपाय होता है, हर एक वस्तु का उपाय, हर एक समस्या का समाधान होता है, हर एक समस्या का, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो असंभव हो, अगर आपकी इच्छा है समझ लो गौरांग की इच्छा है, गौरांग की इच्छा है कि मैं यू नो बहुत अच्छा प्रचार करूँ, बस हो गया काम, इस इच्छा को पकड़ कर काम करो, उस इच्छा के लिए जो कुछ आवश्यक हो उसका पालन करो, जो चीज़ अनिवार्य है उसको स्वीकारो, जो चीज़ नहीं स्वीकार बाधा हो उसको हटाओ, अपने आप होगा काम, यू नो आत्मा प्रभु की अगर समझ लो इच्छा कि यू नो सारे अहमदाबाद में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होना चाहिए, सब लोग वैष्णव हो जाए, यू नो अगर बस इच्छा है तो करो काम उसके ऊपर, यू नो ये जगत चक्षु प्रभु का अगर इच्छा है यू नो कि यू नो इतना लोग यू नो ये भगवद गीता पढ़ना शुरू कर दे जी सी एल करे, वो इतने सारे लोग यू नो भगवद गीता पढ़े, अगर अगर इच्छा है तो यू कैन डू इट, अगर आपकी इच्छा है उस पर निर्भर करता है ना, ये चीज आपकी इच्छा कैसी है वो इस पर निर्भर करता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते क्या है इसका
जो जिस भाव से मुझे बचता है उस भाव से
ऋषि को कहता हूँ। इसका अर्थ क्या होता है मैं समझ नहीं पाया।
उतनी मात्रा में
क्या होता है
भगवान रिप्लाई आते हैं आपको
कृपा मिलती है भगवान
भगवान की कृपा देते हैं। कितनी मात्रा में हम शरणागत होते हैं भगवान देखते हैं कि नहीं देखते चेक करते हैं। भगवान को खरीद भी सकते हैं भक्त ऐसे भक्त कैसे होंगे आप सोचो कि जो भगवान को खरीद लेते भगवान को अपना बना लेते सोचो ऐसी भक्ति कैसी होगी आप सोचिए थोड़ा अंदाज लगाइए। और वो भक्ति को क्या आप स्वीकार कर सकते हो हाँ या ना आप ऐसी मतलब आप ऐसी भक्ति कर सकते हो कि आपकी भक्ति से कृष्ण पराजित हो जाए नहीं सिंपल सा हाँ प्रश्न मिस संभव है कि नहीं है है ना संभव तो है ना कैसे नहीं है संभव हाँ आपका क्या कहना है राजेश राव रंजन प्रभु संभव है ना ये क्या संभव है ना ऐसा बिपिन प्रभु आपका क्या मानना है ऐसा संभव है ना कि आपकी भक्ति ऐसी तीव्र हो तो भगवान आपके पराजित हो जाए आपके सामने ऐसा संभव है कि नहीं है लॉजिकली क्या है संभव है कि नहीं है थियरी क्या कहती है अगले बुधवार बता देना नो प्रॉब्लम। आत्मा आपका क्या मानना है संभव है
पॉसिबल
तो अभी किसके कोर्ट में है बॉल बॉल किसके कोर्ट में है
हमारे
मिस ये कहा होता है अंग्रेजी में कि यू नो अभी मिस किसको क्या करना किसका अभी किसके किसका काम बाकी रहता है हमारा काम बाकी रहता है हम कितने तीव्र भक्त बनते हैं गौरांग बोली जाओ पुला कर शेर हरी हरी बोले नयने बाबे ने यू नो कब मेरी आंखों में से पानी आएगा गौरांग बोलने से कब मेरी आंखों में से पानी आएगा प्रेम बस ऐसे नहीं कब विषय से मुक्त होऊंगा मैं विषय विषय तो बहुत होता है ना संसार वासना हम चाहते हैं ये भौतिक सुख मिल जाए वो सुख मिल जाए ऐसा नहीं है कि यू नो कोई एकदम से मुक्त हो गया ऐसा नहीं है मुक्त होने में भी टाइम लगता है तो कब हम मुक्त होंगे और कब हृदय शुद्ध होगा कब दर्शन होगा वृंदावन धाम का ऐसा तो शुद्धिकरण बड़ा आवश्यक है भगवान देखते हैं कि आपकी इच्छा तीव्र अभिलाषा कैसी है भगवान देखते हैं। जैसा भी वो माता जी बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु जिस दिन संन्यास लेने वाले थे दूसरे तो उन्होंने क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा संकीर्तन किया और सची माता को कहा कि मुझे पर्टिकुलर इसी इसी चीज़ का सब्जी बना के दो इसी चीज़ का फिर एक भक्त कुछ और कुछ दे गए थे क्या दे गए थे केले का कुछ दे के गए थे समथिंग कोई फ्रूट या कुछ दे के गए थे तो महाप्रभु ने कहा सची माता को इसका मिठाई बना के दो ये फिस्ट बना दीजिए मुझे ये चाहिए सची माता भी सोच रहे ये कितना डिमांड कर रहे हैं आज ये खाना है वो खाना है ये खाना है वो खाना है यू नो बार बार बोल रहा है ये बना के दो वो बना के मुझे ये खाना है मुझे ये खाना है ऐसे तो सची माता को सब एक एक करके बना रही थी उनके बेटे की इच्छा थी उनके लिए तो उनका बेटा ही सब कुछ था सची माता के लिए तो निमाई ने कहा सब भक्तों को कि अब कीर्तन करेंगे हम तो शाम के समय रात के समय कीर्तन शुरू किया बड़े जोर जोर से कीर्तन शुरू किया और श्रीवास ठाकुर भी कीर्तन कर रहे थे वहाँ पर और शिवाज ठाकुर को देखकर बीच कीर्तन में ही महाप्रभु जोर जोर से रोने लगे जोर जोर से और शिवाज ठाकुर को गले लगा दिया चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को गले लगा लिया और हमारे वैष्णव आचार्य कहते कि किसी को कुछ नहीं बताया लेकिन ऐसा क्यों किया था उन्होंने
उनका विरह होने वाला था इनसे ये गृहस्थ से तो ये फैमिली के साथ रहेंगे
महाप्रभु ने क्या सोचा था कि एक बार जब श्रीवास आंगन में बड़ा कीर्तन हो रहा था उस समय श्रीवास का अपना बेटा गुजर गया था श्रीवास का अपना बेटा गुजर गया था और सारी महिलाएं रोना शुरू किया श्रीवास ठाकुर को न्यूज़ दिया कि श्रीवास तुम्हारा बेटा गुजर गया है तो श्रीवास ठाकुर ने सबको रोना बंद करा दिया और कहा कि कोई आवाज़ नहीं चाहिए मुझे सब दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में कोई विक्षेप ना हो। उनके हृदय में बड़ी तीव्र पीड़ा थी, उनके बेटे का देहांत हो गया था उसी समय, लेकिन उन्होंने अपने फेस पर कोई भाव प्रस्तुत नहीं किया और बड़े जोर जोर से कीर्तन हो रहा था, और बीच कीर्तन महाप्रभु ने कीर्तन रोक दिया। निमाई पंडित ने कीर्तन रोक दिया। कीर्तन रोक करके निमाई ने श्रीवास को पूछा, श्रीवास क्या हुआ? तो कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं, ऐसे बताओ क्या हुआ। दूसरे भक्त ने कहा कि प्रभु श्रीवास का बेटे का देहांत हो गया है अभी, तो वो कमरे में है अंदर और सब दुखी है अंदर वो यहाँ पर। तो महाप्रभु सोच रहे थे, महाप्रभु तो हृदय भारी हो गया था। महाप्रभु उधर गए, दरवाजा खोला और श्रीवास के बेटे के सीने पर हाथ रख के कहा, उठ जाओ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस समय ये सोच रहे थे, जब मैं अभी ये बताया रात को कीर्तन करते समय, महाप्रभु ये सोच रहे थे कि जिस व्यक्ति ने अपने पुत्र के देहांत पर शोक तक नहीं किया मेरे प्रेम के वश, केवल मेरे प्रेम के वश उन्होंने अपने पुत्र के वियोग का शोक तक नहीं किया, उस व्यक्ति को त्याग करके मुझे जाना पड़ेगा कल। उस व्यक्ति का त्याग करके मैं कैसे रह पाऊंगा? ऐसा भक्त मुझे कहाँ मिलेगा? ऐसा श्रीवास जिसका इतना तीव्र प्रेम है मेरे लिए, ऐसा भक्त मैं कैसे प्राप्त करूंगा बाद में? मैं अगर छोड़ के चला जाऊंगा उनको तो कैसे प्राप्त करूंगा? इतने महाप्रभु उनका हृदय इसलिए जोर जोर से रोने लगे महाप्रभु, लेकिन फिर भी महाप्रभु बड़े स्ट्रांग थे। उन्होंने अपना निर्णय अटल रखा, संन्यास लेने का निर्णय। उन्होंने कहा मैं संन्यास अवश्य लूँगा, और रात को निकल गए महाप्रभु, किसी को बिना बताए। पांच भक्तों को बताया था महाप्रभु ने कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। मुझे स्मरण है तब तक सची माता, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और हरिदास। शायद गदाधर का मुझे स्मरण नहीं है कन्फर्म, लेकिन तो इन भक्तों को बताया था महाप्रभु ने, पांच भक्तों को बताया था कि वो दूसरे दिन संन्यास लेने वाले। बाकी सब भक्त जो भी वहाँ पर थे महाप्रभु के पास में, उन्होंने कभी ऐसा दिवा स्वप्न भी नहीं देखा था कि मायापुर धाम, नवदीप धाम निमाई पंडित के बिना भी हो सकता है। ऐसा उन्होंने सपना भी नहीं देखा था कि मायापुर में महाप्रभु नहीं होंगे। जैसे होता है ना ये प्रभुपाद, क्या है वो हमारे का गुरु जी ने लिखा है, यदि प्रभुपाद ना हो तो तबे की हो तो, वो सॉन्ग लिखा है, यदि गौर ना हो तो, के उसके ऊपर। तो कभी अनुमान कभी ऐसा अनुमान भी नहीं लगाया था कि प्रभु चैतन्य महाप्रभु नहीं होंगे निमाई पंडित, आप सोचिए। लेकिन दूसरे दिन उन सबको बहुत बड़ा वज्रपात होने वाला था उनके हृदय के ऊपर कि निमाई पंडित उनको छोड़कर चले गए। जब भी जिस व्यक्ति को आप इतना प्यार करते हो और वही व्यक्ति अगर आपको छोड़कर चला जाए तो आप क्या कैसा अनुभव करोगे? संसार में वैष्णव के विरह से ज़्यादा बड़ा दुख और कोई नहीं है। लेकिन वैष्णव की महत्ता जनरली ऐसा देखा जाता है कि वैष्णव की महत्ता उसके शरीर त्याग करने के बाद लोग ज़्यादा समझते हैं, जब यहाँ पर होते हैं तब उसकी महिमा नहीं समझते कोई। कई बार ऐसा देखा जाता है, जैसे श्री प्रभुपाद जी का महिमा हम ये नहीं कहते कि भक्त नहीं समझते, लेकिन जितना भक्तों ने गहराई से प्रभुपाद को समझा वो तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उनकी गहराई प्रभुपाद को समझने की। तो ये हरिदास ठाकुर ने उनको बीच में, चैतन्य महाप्रभु को बीच में रोक लिया, हरिदास ठाकुर ने। और हरिदास ठाकुर अकेले खड़े थे बीचों बीच रास्ते में, और बड़े ही तीव्र रुदन के द्वारा महाप्रभु को रोक रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रभु आप सबका त्याग करके जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा क्योंकि आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, लेकिन अगर आप मेरे प्राण की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं, तो आप मुझे अपने साथ ले जाइए पूरी, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना, ये संभव ही नहीं है। गदाधर पंडित का भी यही बात था, गदाधर पंडित ने भी कहा कि मैं आपको छोड़कर रह ही नहीं सकता। मीन्स अगर आप चाहते हो कि मैं शरीर छोड़ दूँ तो मत ले जाओ, अगर तुम चाहते हो कि, लेकिन ये जो भावना थी ना उनकी, ये कोई बाल हट नहीं थी। यू नो कई बार हम कुछ भक्त अगर सोचते कि देखो उन्होंने भी हट किया था तो मैं भी कोई बाल हट करूँगा, कि यू नो कई बार हम लोग बाल हट से गुरु जी को भी मनाना चाहते हैं, बाल हट से कई बार हमारे अथॉरिटी को मनाना चाहते हैं। यू नो कई बार हम ऐसे ऐसा बिहेव करते हैं कि हम बाल हट करके गुरु को, भगवान को, वैष्णव को, सबको अपने वश में लाना चाहते, और हम वही वो करवाते जो हमें चाहिए, जिसमें हमारा स्वार्थ होता है। लेकिन ये बाल हट नहीं था, ये प्रेम था, स्वाभाविक प्रेम, और ये सच्ची हृदय का सुपरफिशियल नहीं था, ये सही प्रेम था। चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बात को स्वीकार किया। महाप्रभु ने कहा, वो ऐसे रोने लगे कि मैं तो निम्न कुल में जन्म लिया हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है आपको कुछ कहने की, मैं कैसे आपको कहूँ कि आप मुझे लेके जाइए, मैं मेरा आपके इतने सारे भक्त है, यू नो मायापुर में आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, और मैं किस मुँह से आपको ये प्रार्थना करूँ, यू नो कि मैं इतना तुच्छ नीच हूँ, किस मुँह से आपको कहूँ कि आप मुझे अपने साथ लेके जाइए। यू नो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भक्त हमेशा अपने आप को सबसे गिरा हुआ मानता है, मानना चाहिए, अगर नहीं मानता है तो अहंकार से शून्य होना आवश्यक है। जब तक अहंकार हृदय में होगा तब तक कृष्ण भक्ति कोशों दूर रहेगी, शुद्ध प्रेम तो बहुत दूर की बात है। और वही समस्या यही है कि अहंकार ही हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए प्रेम भक्ति बहुत ही दूर रह जाती है। भक्ति में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है, और ये अहंकार, प्रतिष्ठा की भावना, ये तो जैसे ऐसे पड़ी है जैसे भक्ति की छाया के साथ, जैसे छाया की तरह घूम रही है हमारे साथ, है ना। वो तो बहुत दूर दूर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती, तो कैसे बाहर निकलोगे, अगर इससे बाहर नहीं निकलोगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर की बात को सुनते 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 विह्वल हो गए। महाप्रभु ने कहा कि हरिदास बस एक शब्द और मत बता रहा, अगर एक शब्द तुम और बोलोगे तो मेरा हृदय फट जाएगा, मैं तुम्हारी और विनम्रता को देख नहीं सकता। ऐसे भक्त होते हैं चैतन्य महाप्रभु के, जिससे भगवान पराजित हो जाते हैं। इसलिए जो भक्त की गंभीर इच्छा है आगे बढ़ने की, उससे भगवान विवश हो जाते हैं आपकी सहायता करने के लिए। आप भगवान को कैसे दोष दे सकते हो कि भगवान आपकी सहायता नहीं करते? भगवान जितनी सहायता करे उतनी सहायता संसार में कोई नहीं करता आपको। हाँ, तो और ज्यादा तीव्र इच्छा होनी चाहिए आपकी, है ना। जिसको ज्यादा कृपा चाहिए उसको ज्यादा तीव्रता से, ज्यादा पतित अपने आप को मान करके, ज्यादा उत्साह के साथ भगवान की सेवा जुड़नी चाहिए, है ना। ये बहुत ही आवश्यक है, ज्यादा उत्साह होना, ज्यादा तीव्रता होनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं तो नहीं होगा। होता रहेगा धीरे धीरे धीरे, यू नो ऐसे चलती है गाड़ी, यू नो वही सुबह उठो, क्या हो, काम करो, शाम को आ जाओ वापस, एक महीने कल करेंगे, उसमें क्या है, यू नो उसको कलयुग का एक गुण है ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिंग व्हाटएवर, उसका अर्थ ये होता है कि आज करे सो कल करे सो परसों, है ना। ये उनकी फिलॉसफी होती है। तो क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए, यू नो करेंगे प्रभु जी, कहाँ बाहर जा रहा है टाइम, अभी क्या करें, करेंगे अभी, यू नो हमसे, हम बूढ़े लोग हैं या हम बिजी लोग हैं, हमसे जितना होगा उतना करेंगे। तो क्या अगर आप अपने आप से संतुष्ट हो तो फिर आगे बढ़ने का गुंजाइश नहीं है। अगर आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, बाकी बोलने से भी कुछ नहीं होगा कि हाँ प्रभु जी आपकी बात सही है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इससे क्या होता है, क्या होता है इससे, कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ विजिबल कुछ होना चाहिए ना, तब भगवान आप देखेंगे कुछ कर रहे तब सहायता करेंगे, ऐसे कैसे सहायता करेंगे। इसलिए जो जिस भाव से मेरी शरण आता है भगवान कहते हैं उसको, उस भाव से मैं इसे प्रकट करता हूँ। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम आगे बढ़े भक्ति में। हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल हमने यूज किया, लेकिन हरिदास ठाकुर इतने तीव्र भक्त थे कि महाप्रभु विवश थे उनके लिए, वो आए उनके साथ, उनके लेके गए हरिदास ठाकुर को। सोचिए चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु है कि वो आपसे कुछ मांगते नहीं है, सोचो कोई योग्यता नहीं मांगते, ये ऐसा नहीं कहते कि आपने इतना पुण्य कर्म किए होंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, आप इतने आगे, यू नो, ऐसा कुछ नहीं. वो उनका ऐसा कोई है ही नहीं, कोई टर्म्स कंडीशन ऐसा कुछ है ही नहीं. केवल हरि नाम का बस उच्चारण करो, भगवान कहते हैं उससे आप मुक्त हो जाओगे. हरि नाम का, हरि नाम स्वयं ही इतना पावरफुल है. चैतन्य महाप्रभु ने उस पर सारी मर्सी कृपा, जैसे वो एक भक्त थे सुबुद्धि रॉय, जानते हो आप उनकी कथा सुबुद्धि रॉय का? और कोई जानता है सुबुद्धि रॉय का कथा?
स्टार्टिंग
ना सुबुद्धि रॉय एक भक्त थे, सुबुद्धि रॉय राजा थे, और उनका मंत्री था हुसैन सा. और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि सत्ता बदल गई, राजा मंत्री बन गया और मंत्री राजा बन गया. तो एक बार हुसैन सा की जो नवाब बन गया, नवाब की जो बेगम थी, तो बेगम ने एक बार अपने पति का खुला पीठ देख लिया, कभी खुला पीठ. तो नवाब के पीठ के ऊपर कुछ निशान थे. तो बेगम ने पूछा कि ये निशान कैसे है? तो नवाब ने कहा, जो मुस्लिम राजा था उसने कहा, कोई बात नहीं, छोड़ो अभी, इसके कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पुराना है. तो बस बताइए, मैं आपकी बेगम हूँ, बताओ क्या हुआ? तो बोले, जब मैं मंत्री हुआ करता था और सुबुद्धि रॉय राजा हुआ करते थे, तो मेरी एक कोई छोटी गलती हुई थी, मेरी ही गलती थी, उसके कारण मुझे उन्होंने मुझे थोड़ा दंड दिया था, थोड़े कौड़े पड़वाए थे, क्या बोलते उसको,
कौड़े मरवाए थे.
तो इसका इसके कारण ऐसा हुआ है. उसकी ये मजाक, ये मंत्री था ऐसा? और बोले, नहीं, उस समय वो राजा थे, मैं मंत्री था. तो बोले, अब क्या हो गया, आप बदला ले सकते हो वापिस, आप तुम राजा हो, वो मंत्री है. बोले, नहीं, मैं राजा आज बना हूँ, वो भी उनके द्वारा, उनसे सिखा हूँ मैं सब कुछ, मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता. तो बोले, ऐसा कौन देखता है? जनरली ऐसा होता है ना, पत्नियों का ज़्यादा चलता है घरों में, सॉरी माता जी, कोई बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा होता है 90 केस में, है ना. लेकिन शास्त्र के अनुसार पत्नी का धर्म है पति को फॉलो करना. पति का धर्म ऐसा नहीं कि पत्नी को फॉलो करो, शास्त्र ऐसा कहते हैं. पर तो बेगम की बात को स्वीकार नहीं कर पाए, अस्वीकार नहीं कर पाए. और नवाब ने बोला कि मैं उसको मारूंगा तो नहीं. बोले, ठीक है, आप उसको मारना मत, लेकिन आप उसकी जाति तो बदल दो. बेगम ने कहा, उसका मियाँ तो बना दो कम से कम. तो बोले, ठीक है, वो कर सकता हूँ. तो उन्होंने क्या किया, उस समय में बड़ा ही बड़ा ही रूढ़ी था वो, क्या बोले, स्ट्रांग था ऐसा, कि अगर मुसलमान के घर का पानी भी अगर किसी के ऊपर गिर गया तो वो कास्ट आउट हो गया, उसको बहिष्कार कर दिया जाएगा. तो सुबुद्धि रॉय के ऊपर पानी छिटक दिया, हाय हाय, सब लोग ब्राह्मण, सारे फैमिली वाले, अब तो ये गया नाथ बाहर, क्या बोलते हैं, समाज से बाहर, उसको त्याग हो गया, पूरी कास्ट में से उसको निकाल दिया. कई बार हमारे भक्त भी सोचते हैं, प्रभु जी, अगर हम कास्ट को संभालेंगे नहीं तो हमें कास्ट आउट कर देंगे सब लोग, तो हम क्या करेंगे फिर, कहना घर के ना घर के, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि हमारी भक्ति अच्छी है या नहीं, भगवान हमें रखेंगे नहीं, भगवान पे विश्वास अभी कहाँ पता, भगवान तो तस्वीर में है, जब सामने आएंगे तो पूछेंगे, पता नहीं भगवान हमारा हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे. हरिनाम ले रहे, आप लोग बोल रहे तो ले भी रहे, आप बोलो दीक्षा भी ले लिया हमने, लेकिन अभी आगे जाके भगवान हमारी सहायता करेंगे नहीं करेंगे वो तो आप कैसे बता सकते हो, इसका क्या क्या गारंटी क्या है? तो वो श्रद्धा का विषय, अभी आपकी श्रद्धा इतनी कमजोर है ना? तो कास्ट में से बाहर निकालने के बाद सुबुद्धि रॉय तो बड़े दुखी हो गए, पटनी के पास गए, पटनी का है छूना मत, तुम तो मियाँ बन गए, जाओ कास्ट में से बाहर. परिवार ने त्याग कर दिया, पापा उसके सब ने त्याग कर दिया. सुबुद्धि रॉय इतना निराश होके गए बाहर और काशी में गए. काशी में जाके उन्होंने पंडितों को जाके पूछा कि भाई, मेरे पर किसी ने पानी डाल दिया है तो इसका प्रायश्चित क्या है, इससे कैसे बाहर निकलने का क्या उपाय है? तुम बताओ क्या है तुम्हारा, एक ग्रंथ खोला. हाँ, नहीं, वो हाँ तो इसका यह आता है प्रायश्चित कि आपको गरम गरम घी पीना पड़ेगा। गरम गरम घी पियोगे तो आपका प्रायश्चित हो जाएगा। सुबुद्ध रहने का क्या मृत्युदंड, गरम गरम घी पीने का अर्थ मृत्युदंड, आदमी मर जाएगा गरम गरम घी पिएगा तो, ये तो मृत्युदंड। इतने कठोर नियम है तो बोले हाँ ऐसे कठोर नियम है शास्त्र में। बोले मुझे इतना संतोष नहीं हुआ इससे। तो ऐसे गुजर रहे थे तो एक भक्त ने कहा कि क्या क्या समस्या आपकी। बोले मेरा ऐसा समस्या है कि ऐसा हो गया है तो मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो बोले कि वृंदावन जाओ, वृंदावन चैतन्य महाप्रभु से पूछो, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर है, उनको पूछो कि इसका प्रायश्चित क्या होगा। तो सुबुद्धि राय गए वृंदावन, और वृंदावन में जाके उन्होंने महाप्रभु की शरण ली और कहा कि ऐसा समस्या हो गया है, अब मैं क्या करूं। महाप्रभु क्या इसमें सोचने का, एक कृष्ण नाम बोलो, हरे कृष्ण मंत्र, एक बार कृष्ण मंत्र बोलो सारे पाप क्षय, एक बार नाम भगवान, एक नाम लिया भगवान का सारे पाप क्षय, दूसरी बार नाम उच्चारण करने से प्रेम प्रकट हो जाता है धीरे धीरे, भगवान के नाम का यह प्रभाव है, नाम बोलते ही जब हजार। सुबुद्धि राय ने उसको स्वीकार किया और सारा वो तो भक्त बन गए और वृंदावन में ही रहे हमेशा, उनको भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त हुआ। महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम वृंदावन में रहो, ब्रजवासियों की सेवा करो, दैट्स इट। वो कंटिन्यू सेवा करते रहे। तो भगवान के दिव्य नाम का ऐसा प्रभाव है, और चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके हम सबको दिया, आपको दिया, सबको दिया ऐसा प्रेम जो किसी को नहीं मिलता है। अभी करने का काम हमारा है, हमें ध्यान से जप करना है विनम्रता के साथ, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तीव्र इच्छा प्रस्तुत करनी है। थोड़ा गंभीर बनिए, थोड़ा शांत हो जाइए भौतिक इच्छाओं से, थोड़ा यू नो थोड़ा गंभीरता से सोचिए कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। यू नो आपको कष्ट होना चाहिए थोड़ा कि प्रभु जी आप, मैं बड़ा परेशान हूँ, आगे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। यू नो आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, इसमें आपका कोई छोटापन नहीं होगा। अगर आप किसी भक्त के पास जाओगे यू नो, आप पूछोगे गुरु जी के पास जाके पूछोगे, किसी वैष्णव के पास जाके पूछोगे कि मैं आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो इससे आप कुछ छोटे नहीं हो जाओगे, उल्टा आपका सम्मान बढ़ेगा। फॉर दिस लास्ट एग्जाम्पल, एक भक्त आज मुझे मिल रहे थे तो बोले कि हम एक जगह प्रवचन दे रहे थे, नहीं एक भक्त ने उनको बुलाया कि प्रभु जी यहाँ पर मैं रेगुलर प्रवचन देता हूँ, तो मेरी इच्छा है कि एक बार आप आइए प्रवचन देने के लिए। तो बहुत सारे लोग थे, तो उनको कहा कि यू नो बड़े सारे भक्त सब लोग तो अच्छे, लेकिन एक ही ऐसा है कि बहुत प्रश्न पूछता है, और यू नो इट्स लाइक अ थ्रेट टू अस। तो वो जो भक्त आए वहाँ पर, उन सबको मिले जो जो भक्त थे, और आने के बाद सब बाद में उन्होंने कहा, पहले ही आके उन्होंने कहा कि आपके जितने भी बाकी सब है ना, उससे वो भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे इसका गारंटी नहीं, लेकिन ये थ्रेट वाला जो है जिसको आप थ्रेट मानते हो वो शुद्ध भक्त बन गया, वो बन गया बाद में भक्त, ब्रह्मचारी बन गया, सोचो फुल टाइम हो गया। इसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति सही में सोचता है वो प्रश्न भी पूछता है, और जो सही में प्रश्न पूछता है उसको आगे बढ़ने की इच्छा भी है, उसका फ्लो सिस्टमेटिक है तो उसको आगे बढ़ने की इच्छा भी है। तो इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा आपको। क्या करना है वो आप भक्तों से संपर्क करो, गाइडेंस लो और आगे बढ़ो इस तरह से। हाँ लेकिन कुछ करना पड़ेगा। हाँ यू नो केवल सुनने से क्या होगा, मैं आपको बार बार आपको बताता रहूँ, लेकिन आप जब तक आप यू नो मोमेंट आपकी नहीं होगी तब तक क्या परिवर्तन हो सकता है, नहीं ना। सो आप सब अच्छे भक्त हो और अच्छे भक्त बनिए, है ना। ऐसा उत्साह होना चाहिए। तो अगर आपको कहा जाए कि केवल दो लोग को भक्त बना लो तो उसको 20 बनाने की इच्छा होनी चाहिए, ऐसा उत्साह होना चाहिए। तो आप भक्त कृपा करके अपना प्रयास और तीव्र बनाइए। और मैं तो आपको आज बहुत सारी कथा सोच के बैठा था कि ये कथा बताऊंगा वो कथा बताऊंगा, लेकिन आप सब भक्त यू नो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई लेट हो, यू नो वो तो फिर सोएंगे प्रभु जी, आपको घर ले घर पहुंचने में बड़ा लेट हो जाता है। स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछिए। पूछिए प्रश्न आपका ही, सब फिलोसॉफी आपकी, भगवान आपके, कृष्णा आपके, सब आपके ही। पूछिए कोई प्रश्न है तो पूछिए। किसी को ऑनलाइन प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं।
ऑनलाइन प्रसाद नहीं मिलेगा।
ऑनलाइन बहुत अरेंजमेंट कर सकते हैं आत्मा।